نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ما زاد الكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه الفضل والمر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، اسلام کی جامع تعریف اور کی جائے تو ان دو لفظوں کے اندر پورا اسلام بیان کیا جا سکتا ہے. پوچھا جائے اسلام کیا ہے تو اس کا جواب آئے گا کہ اسلام جو ہے حسن معاشرت کا نام ہے، حسن معاشرت کا نام ہے. حسن معاشرت کس کو کہتے ہیں؟ معاشرت، رہن سہن، سوسائٹی، آدمی رہتا ہے نا، رہنا سہنا، یہ سارا اس کو معاشرت کہتے ہیں. یعنی ریلیشن انسان کے پورے جو کچھ اس کو معاشرہ کہیں گے. تو حسن مطلب کیا ہے؟ کہ بہترین قسم کا معاشرہ، بہترین قسم کی سوسائٹی، اس کا نام اسلام ہے. اور اگر حسن معاشرت کو پوچھا جائے کہ وہ کیا ہے تو اس کے لیے جو ہے تعریف، کہ حسن معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان خلق خدا کو تکلیف نہ پہنچائے، یعنی اس سے کسی انسان کو بھی، کسی بھی مخلوق کو، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس سے تکلیف نہ پہنچے. یہ ہے اسلام، اس کا نام اسلام ہے. اور صحیح چلنے والوں کی تعریف اسلام پر یہی ہے کہ ان کا جو اخلاق بہت بلند ہوتا ہے. تعریف ہے ان کی کہ ان سے کسی انسان کو بھی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو، اس سے تکلیف نہ پہنچے. بھائی اصل مقصد جو اسلام کا یہ ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہیں کرو بھی ہوں. کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے نا، وہ درد دل کے ساتھ پیدا کیا ہے، دوسروں کی بھلائی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. یہ نہیں کہ اپنی عبادت کے لیے صرف پیدا کیا ہے. اگر عبادت کے لیے پیدا کرنا چاہتا تو فرشتے کم تھے، کروبیہ کہتے ہیں فرشتے کو، کیسے کیسے فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں. تو یہ تو نہیں تھا کہ ہم آئیں گے تو اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو سجدہ کریں گے، ایسی بات نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی آزمائش تھی، میں نے مخلوق جو پیدا کی دنیا میں، مقصد پہ یہی پتہ لگتا ہے انسان کو. حقیقت یہ ہے کہ اسی سے انسان کی آخرت کی بھلائی کی ضمانت موجود ہے اس کے اندر. کتنی ہم عبادات کریں، کتنے کچھ کریں، لیکن کام کس سے بنے گا؟ جا کے انسان کے اخلاق سے بنے گا، اس نے اخلاق سے. رات کا تہجد جاگنا بہت آسان ہوگا، لیکن اخلاقی عمل کو کرنا انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، یہ بڑا دشوار ہے، اور کام ان سے بنتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ اس کی تعریف کر رہے صحابہ نے کی کہ ایک عورت ہے اور सौ मुसलात कष्ट से अदा करती है, यानी कष्ट से मुराद ये मतलब पांच ही फर्ज है नमाजें, तो उससे ज्यादा भी इबादत करती है, खूब नवाविल पढ़ती है, रोजे तो तीस ही हैं लेकिन बहुत कसरत से रोजे भी रखती है, नवाफिल भी पढ़ती है, इबादत भी करती है। तो अल्लाह के नबी ने सवाल किया कि उसके अपने हमसायों के साथ कैसे ताल्लुक है, उसके साथ तो ताल्लुक अच्छा नहीं है, ज़रा थोड़ा बहुत तन बन रहती है, ज़रा थोड़ा टेंशन रहती है आपस में हमसाय के साथ। फिर दूसरी औरत का तस्कर आया तो उसका जो तारीफ की लोग सहाबा ने कहते जी वो और जो है इबादत तो सर अपने मामूल के मुताबिक करती है, कोई कसीर इबादत नहीं है उसकी, लेकिन उसकी सिफत ये है उस औरत की कि वो अपने हमसाओं से चतल करती है, जो पकाती है उनको भी दे देती है, अगर कोई रंजिश हो जाए तो उनको मना लेती है, छोटी मोटी बातों को छोड़ देती है, बल्कि हत्तल मकान कोशिश करती है कि भाई हमारी दोस्ती चलती रहे, तो अपना नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, जैसे आज हमारे पोर्च में कोई गाड़ी ठहरा दे साथ वाला तो मुसीबत आ जाती है, जब तक तो उसको वहाँ से निकालने ना देते कि निकले ये हमारे क्यों हमारे रास्ते में क्यों रुके, हमारे रास्ते में क्यों आ गया, जगह है लेकिन क्यों आ गया। तो अब दो औरतों जो हालात पेश किए ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक कहता था कसरत इबादत को और जहरिया हालात बहुत बुलंद, उसके जहरिया हालात बुलंद, हर आदमी तो कहेगा बड़ी नेक औरत है माशाल्लाह, सोम सलात जो भी उससे दुआ कर रहे हैं उसके पास बैठे हैं सब कुछ ही जाहिर आज जीत मामूला सर, और मामला ऐसा अंदर से भेज साथ वाले के साथ मामला उसका जो है ऐसी। दूसरी वो हो गई जितनी हिम्मत है अपने फ़र्ज़ अदा करती है, लेकिन इखलाक ये है कि वो साथ वाले से जो है अच्छे ताल्लुक रखती है, तब फैसला होता है कायनात के सरदार का फैसला करता है सुभान अल्लाह। कहते पहली औरत जो है ना जिसको हम समझते हैं जन्नत कि वो जहन्नमी है, और दूसरी औरत जो है वो जन्नती है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किए हम साथ उन्नतात के लिए कुछ कम नहीं करोगे मेरे भाइयों। असल चीज है तो क्या है अखलाक, इंसान इबादत पे थोड़ी इंसान तोला जाएगा, हकीकत में इबादत जो है वो भी इंसान की इसी इस पॉइंट पर लाने के लिए है कि उसने अखलाक जो है अल्लाह के नबी से समझे। सबसे पहले आप देखें नमाज तो नहीं फर्ज की थी, वैसी चीज तो नहीं आई थी, सबसे पहले आपको जो था अखलाक था। इस्लाम की खूबी ये है कि आप देखें किसको तब्दील किया था, सबसे पहले पूरे माशरे को तब्दील कर दिया था, क्या हालात थे क्या खराफात थी और किस तरीके से सदियों की जो लड़ाइयाँ होती थी दुश्मनी थी आपस में एक भाईचारा हो गया, इतनी मोहब्बत हो गई आपस में जिसका अंदाजा ही कोई नहीं कर सकता, सालों साल सदियों की दुश्मनी ख़त्म हो गई थी, इंतकाम ख़त्म हो गए थे और मोहब्बतें आपस में बढ़ गई थी, कुर्बानियों के तहादर पर कुर्बानी पहुँच गई थी एक दूसरे, पता नहीं चलता था कि रिश्तेदारी है या सिर्फ ऐसी दोस्ती है, इस्लाम था। अगर इसको हम इस्लाम समझते हैं, अगर ये बात सही है कि भाई अगर हुस्न-ए-माशरत मजबूत है तो इस्लाम भी मजबूत है, याद रख हुस्न-ए-माशरत कमजोर है इस्लाम भी कमजोर है, मामला किससे चलता है हुस्न-ए-माशरत से, अगर हुस्न माशरत है ही नहीं तो फिर इस्लाम भी नहीं है, खुदा हाफिज। जिस नबी पाक ने कहा कि देखो इबादत को नहीं पैमाना बनाया, किस चीज़ का पैमाना बनाया उसके खिलाफ का, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमें सही अपने रास्ते को तयन करना चाहिए मुकम्मल तौर पर, जिस चीज़ के अंदर हमें देखें ना कि जो कमी महसूस हो रही है हमें उसको हमें रेक्टिफाई करना चाहिए, और उसी के मुताबिक जिस तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और आपका जो तालीम और आपका जो तरीका हमें बताए उस पर हमें अमल करना चाहिए, खुद सख्ता जो है मामला ये ना हो कि फिर आखरत में बहुत बड़ा काम होगा। ये बहुत देखना चाहिए भाई कि ये हमारे अंदर है कि क्या है, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوبصورت تعریف کی ہے مومن کی، آپ دیکھیں کتنی بڑی تعریف ہے. کہتے ہیں مومن تو ایسا ہو کہ جب اس کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ ہو، جب اس کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ ہو تو لوگوں کے دل کے اندر وہ ایسا بیٹھ جائے، ایسی وقت آ جائے اس کی، ایسا بیٹھ جائے کہ وہ کہیں کہ بس ساری دنیا ہمیں دھوکہ دے سکتی ہے، یہ انسان نہیں دھوکہ دے گا. جی شان کتنا اونچا ہو جاتا ہے انسان اخلاق سے، کوئی کرتا ہے آج ہم پہ بھروسہ؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. یہ بیسک چیز ہے اسلام کی، الحمدللہ. جیسے کوئی الحمدللہ، جیسے اللہ نے جب ہمیں فرائض دیے ہیں، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز اللہ نے عطا فرمایا ہے. اللہ اور ہمیں نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن بیلنس ہونا چاہیے لائف، بیلنس ہونا چاہیے. کتنی خوبصورت آپ ڈیفینیشن ایک انسان کے اللہ کے نے فرمایا کہ یہ جو ہے اسلام، اسلامی معاشرہ اس کا نام ہے. مخلوق کوئی بھی ہو، مخلوق پہ تو سب آ گیا، ہم انسان تو انسانی ہے، وہ تو انسانی ہے، لیکن مخلوق میں تو سب جانور بھی آ گئے، چیونٹی بھی آ گئی، مچھر بھی آ گئے. منع ہے کہ بغیر جو آپ کو ضرر نہیں دے رہا، آپ کو تکلیف نہیں دے رہا، اس کو کیوں مارتے ہیں بےچارے کو؟ ایک تو جانور ہے جو آپ کو کاٹے گا، یہ کوئی تکلیف دینا، بچھو ہے، سانپ ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن بلا کسی جانور کو آپ مار رہے ہیں، کسی کبوتر کو تنگ کر رہے ہیں، کسی چڑیا کو تنگ کر رہے ہیں، کسی انڈے توڑ رہے ہیں، یہ بھی نہیں بلکہ اللہ باب. یعنی یہ شان تو پھر یہی ہے نا، اس مقام پہ تو پھر انسان یہی اللہ والا بنتے ہیں انسان. کثرت عبادت تھوڑی لے کے جاتی ہے، کثرت اخلاق لے کے جاتا ہے. حضرت فضل کشی رحمۃ اللہ کا واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ ایسے فقیر آتے تھے آپ کی خانقاہ میں، تو ایک فقیر جو تھے بڑے اعلیٰ مقام کے ولی تھے سارے، جن کے فقیر تھے الحمدللہ، جو فارغ وہاں سے ہوئے تو ان کے تو مقام ہی بہت بلند تھے. تو ان میں سے ایک فقیر نے، یہ نہیں کہ عام ٹنگڑو لوگ تھے، وہ ایسے مجالس کے اندر بہت اونچے لوگ جاتے ہیں الحمدللہ، تو انہوں نے کیا کیا، چلتے چلتے آپ کے یہاں درخت تھا بیری کا کسی چیز کا، تو بیر توڑ لیا یا کوئی پتا توڑ لیا، چل پڑے. آپ کو پتہ لگ گیا کش سے کسی چیز سے، بلا لیا، ہے تو معمولی چیز، بیٹھ جاؤ. یہ اللہ والوں کا اخلاق سکھایا جاتا ہے. میں عرض کرتا ہوں نماز روزے تو آپ علماء کرام ماشاءاللہ ان باتوں کو سکھاتے ہیں، لیکن یہ اخلاق جو ہے پریکٹیکلی عملاً، زبانی کلامی نہیں، عملاً سکھایا جاتا ہے، عملاً آتا ہے. کہتا بھی بات ہے کہ یہ مجھے بتاؤ، جی تم نے یہ درخت کس ہے، کس کی ملکیت ہے؟ کہتا جی آپ کی. تو بیر میں توڑا، جی بس بھوک لگی تھی. کہتے شریعت اجازت دیتی ہے آپ کو اس چیز کی؟ کہتے نہیں. کہتے پھر کیوں توڑا؟ اس نے جرم کیا، گناہ کیا، اس کی تمہیں سزا ملے گی. کیسا اخلاق خراب کیا ہے اس میں، لیکن احساس دلا دیا کسی کی ملکیت میں آپ بلا وجہ تصرف کیسے کر سکتے ہیں؟ مہمان ہیں آپ، کھانا کھانے گئے. دیکھیں ایک اور آپ کو بزرگ کی بات بتاتا ہوں، یہ عام ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، یہ ہم سیکھتے ہی نہیں، یہ ہمارے دین ہی نہیں، استغفر اللہ، یہ دین نہیں ہے ہمارا. اور آپ، میں حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں دین ہے یہ، اگر یہ نہیں آپ کا تو دین ہی نہیں ہے. حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، توجہ ہی نہیں جاتی اس طرف، خیال ہی نہیں جاتا کسی کا، اور اتنا شوق اللہ والا بننے کا، سب کچھ بیسک جو ہے اخلاق ہے ہر انسان کے اندر. جانور سے انسان بن جائے، کیونکہ انسان ہم ہیں تو ایسے ہی دنیا میں رہتے ہیں، رنگ چڑھتا ہے، کچھ کرتا ہے، لیکن اصلاح تو کرے آتے ہیں پھر اپنے آخرت کے لیے. ہم کیا کریں گے پھر آخرت کے اندر، سوچیں. تو ہاں ایک اور واقعہ اس پہ مجھے ایک یاد آ گیا، اللہ والے دعوت کی کسی نے، دیکھیں اب کتنی بڑی بات ہے دعوت کی، بالکل حقیقی واقعات سنا رہا ہوں، اللہ والے کے واقعہ، ہندوستان کا واقعہ. بزرگ تھے بڑے، حضرت آئے کھانا کھائیں، کھانا کھائیں، جو دعوت کرتے ہیں کوئی مرید کر دے کسی کی دعوت میں، شیخ کی چلے گئے. اور ظاہر ہے اب ایک مرید جب شیخ کے لیے دعوت کر رہا ہے تو سارا اسی کے لیے بنا رہا ہے، کسی اور کے لیے بنا رہا ہے؟ کھانا اسی کے لیے بن رہا ہے، جو بھی دسترخ پہ آئے گا اس کے لیے آئے گا نا، उसको दावत दी उसने अपने शेख को, खाना आ गया अलहमदा लवाजमात थे खाते रहे। तो उसके बाद उनके दिल में आया कि मैं ये शोरबा पीऊं, शोरबा होता है ना सालन का, दिल में आया ख्याल कहते नहीं मैं शोरबा पीऊं, या ख्याल आया था या फिर लोगों को समझाने वाली बात होगी, जो अब तक बात चल रही है आप तक पहुंच रही है इसमें हिकमत होगी इनकी हजरत की। तो अब उन्होंने क्या किया, जो मेजबान था मुरीदी था, कहता भाई एक बात सुन जी, तो मैं कहते ये शोरबा ना, कहते मैं दूसरा लाभ कर, नहीं नहीं दूसरा ही चाहिए मुझे, मुझे ये होता है क्योंकि हम जिस शोरबे के अंदर ये भी एक और वाक्य में जिस दावत हो ना, जिस शोरबे के अंदर मुर्गी की टांग ना हो ना तो फिर वो छोड़ देते हैं, कहते और सालन लाओ, उसी सालन है तो उसी नहीं और सालन लाओ, मुर्गी तो दो टांगे होती हैं बेचारी की, अब कहाँ से लाएं इतनी सारी टांगे, तो क्या मतलब है कि नहीं टांग आ जाएगी इसमें, इसलिए और नहीं और सालन लाओ। तो उन्होंने जब कहा कि भाई शोरबा, कहते हाँ जी हाँ सर शोरबा तो है, कहते मैं आपसे इजाज़त लेनी है कि मैं ये शोरबा पी सकता हूँ, मेरा दिल कर रहा है, कैसी बात करते हैं, ये तो खाना ही आपके लिए बनाया था सारा, कुछ नहीं क्या बात है आप खाएं, आप देखें जरा अल्लाह होने के साथ किस तरह शरीर पे चलते हैं, कितना सेंसिटिव होना चाहिए इंसान को, ये अब ये नहीं कि जी उनका वाकया, नहीं नहीं हर इंसान को आखिरत में जाना है, लगो जवाब देने हकूक देने, इतने हम चुप जितने अल्लाह वाले हैं बस ठीक, ये क्या बात है, ये तो कुछ सेंसिटिव बनता, कहते नबी पाक से हुआ जी हम तो नहीं करेंगे, तो हर बात जो बता रहे हैं हम इसलिए बता रहे हैं कि आप करें, वो तो बताने के लिए आए थे, अल्लाह ने खुद क्या बशीर और नज़ीर हैं, उनकी तो शान ये थी, वो तो हर चीज़ हमें दिखाने के लिए है, जो कुछ भी आपने किया अपनी ज़ात के लिए कहा ही नहीं, अल्लाह ने खुद कह दिया कि जो बोलता है मेरे वही से बोलता है, उनकी तरफ ना देखें, हाँ माशाल्लाह देखें कितना मुकाम, भाई मुकाम तो था उनका, तो मुकाम था जो करके दिखा रहे हैं, पत्थर जो पेट में बांधे करके बता रहे हैं कि ऐसे मौके पर ऐसे कर लिया गम, हम उनकी तारीफ तो कर रहे हैं जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये मकसद नहीं कि अपनी तारीफ कराने के लिए तशरीफ लाए थे, अलग नहीं वो तो बताने के लिए है, तुम्हें सब कहते हैं तो ये अल्लाह का भी एहसान है। उन्होंने क्या किया तो कहने गए जी तो हजरत आपके लिए इसमें क्या मामले, अब उन्होंने एक शरीर नुकता दिया सर, कहते कि ये कोई खाने की चीज है एक चीज, ये पीने की चीज नहीं है, अब शरीर नुकता निकाले, ये क्या चीज है खाने के लिए, आपने इसको खाने के लिए रखा था, मेरे पीने के लिए तो नहीं रखा था, क्योंकि पिया जाता ही कौन है, सालन लाए तो आप रोटी तो कर दें डोंग उठा के पीने शुरू कर दें सालन के, पागल ही हो ऐसे कहते हैं आज तो बहुत कम देखे, तो घर में तो शायद कर ले आदमी ऐसी हरकतें लेकिन बाहर तो बहुत एहतियात करते हैं ना, कहता तो ये है खाने की चीज और मैं आपसे करूँगा मैंने पीना है, मेरा दिल कर रहा है, तो आपकी इजाजत मुझे खाने की, मुझे पीने की तो आपने इजाजत नहीं दी, मेरे तस्तर में तो आपने दिया था पूरा, तो अब मैं आपसे इजाजत ले रहा हूं कि मैं इसको पी सकता हूं, उसकी दूसरी वजह देखिए असल, अब देखें क्या हदीस के मानने वाले वो लोग थे, सुभान अल्लाह सुन्नत को मानने वाले लोग, क्या दूसरी वजह मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता, क्या सर मुझे क्या तकलीफ होगी कि सुने, मैंने ये पिया शोरबा आपका, यहाँ इतने लोग बैठे हैं वो कहेंगे हजरत ने पिया तो हम भी पियेंगे, अब हर आदमी पीने के चक्कर में होगा, आपने तो ये बनाया महदूद खाने के लिए तो वो पीना शुरू हो जाएंगे तो आप कहाँ से लाएंगे और सालन, तो आपको सख्त तकलीफ नदामत होगी इस चीज पर, सुभान अल्लाह इस पर तो बोले सुभान अल्लाह, ऐसी चीज में तो बोलना चाहिए, अल्लाह की तारीफ करना चाहिए कि ऐसे इंसान पैदा किए इंसान है, हम जो यहाँ जमा हुए मेरे भाई ये मैं बातें बता रहा हूँ इसलिए कि हम ऐसे बने, हमें ऐसे बनना है, ये हमारी मंजिल है, हम ऐसे इतने गए गुजरे नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन है, अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, जिक्र अस्कार करते हैं, शिकुने सूरतें सब अल्लाह ने तब्दील कर दी हैं, तो दिलों को तो तब्दील करें ना आदमी, ये सोचिए ना एडजस्ट करें अपने आपको कितनी यानी सेंसिटिव बात, कहते आपको तकलीफ होगी और मोमिन की शान नहीं कि किसी को तकलीफ दे, मैं आपको कैसे तकलीफ दे दूं, तो कितनी बड़ी बात है भाई, ये तो ऐसा है कि इंसान किसी भी चीज को तकलीफ ही ना पहुंचे, जानवर देखें आप जानवर हैं, जानवर के हकूक हैं, सबके हकूक हैं, हर एक के हकूक हैं, आप ये नहीं कि बेजबान है कुछ नहीं, हमसे ज्यादा जबानें उनकी हैं, बोलने पे आते तो लता सब कुछ सुनवा देते हैं उन्हीं से। हाँ ऐसी बात नहीं है, कई कई मिसालें ऐसी कि कुत्ता भी बोल रहा था, गधा भी बोल रहा था और शेर भी बोल रहा था। बहुत इन जबान बात कर, बात करते हैं। अरबी है तो अरबी से बात करेंगे, जो जबान होगी वो शुरू कर देते हैं बोल, गधा ही बोलता है। तो ये है दीन असल में, इसको कहते हैं दीन। इसमें और तकलीफ देने का जहां तक मामला है किसी मोमिन को, आप क्या समझते हैं? अभी ये ऐसे बैठे हैं मतलब हमारे साथ, ठीक है ना, दूसरा आदमी बैठा है साथी, अब इन्हें अपने चौड़ा होने के लिए मिसाल दे रहा हूँ, उसके घुटना जोर से मारा, मार दिया, पता नहीं, इसका जवाब देना पड़ेगा रोजे के हाथ में। आपने बेहतियाती, हो सकता है उसको तकलीफ हो इस चीज़ से, वो किसी इसमें हो, देखेंगे कितनी बड़ी बात, इतनी एहतियात है। ये नमाज आप जुम्मा पढ़ने आप आ रहे हैं, इतनी बड़ी इबादत के लिए आ रहे हैं, नहा के भी आए हैं, सुरमे भी लगाए हैं, खुशबू भी लगाए हैं, इमामों भी बांधे हैं, दाढ़ियों पे तेल भी लगाया है, और बड़े बड़े जनाब हिसाब किताब से पहुंच रहे हैं, और हमारी ईद का दिन है, बहुत हर कदम पे बरकत है, जुम्मे की तारीफ शुरू कर दूँ तो किधर मामला चला जाएगा, इतनी बड़ी इबादत में अल्लाह भेज रहा है, देखें। लेकिन इतनी बड़ी इबादत में आने के बाद उस आदमी को सजा क्या दी जा रही है? क्यामत के रोज जहन्नुम में जहन्नुम का पुल बनेगा और तमाम दुनिया उसको रूंधती चली जाएगी। क्यों क्यों? उसने जो तो जुम्मा पर उसने क्या किया, उसने ऐसी हरकत की है कि उससे तकलीफ दी है एक इंसान को। कैसे? कि वो आया देश है, कैसे भी उसकी गर्दन फलांग के आगे जाने की कोशिश की है, लोगों की गर्दन फलांग कर आगे जाने वाला शख्स, उसकी ये सजा है कि उसने तकलीफ दी है इंसानों को, बैठे तो आगे जाने के लिए उसने ख्याल नहीं किया क्या है कि लोगों को तकलीफ ना हो, आराम से जहां आए वहीं बैठ जाओ। अगर आस्ता आस्ता जगह बन जाए या कोई आगे आपको जगह दे रहा है उठने के बाद, तो आप आराम से धीरे धीरे जा सकते हैं। लेकिन ये कायदा कि आप छलांगे मारते आ रहे हैं और लोग कायदा रहे, कितनी बड़ी सजा दी है। वो तो जुमा पढ़ के चला गया, दुआएं भी मांगी हैं, अब बाद में जिक्र भी किया होगा, बाद में कुरान भी पढ़ा होगा, और बाद में कह भी रहा होगा मेरी दुआएं वाजी, बस बहुत कुछ समझ रहा होगा। लेकिन उसके लिख दिया गया तकदीर में कि जहन्नुम के क्यामत में जहन्नुम का पुल बनेगा, इसके ऊपर से दुनिया गुजरेगी, इसको रूंधती चली जाएगी। मुमिन है, कलमा पढ़ने वाला है, कितनी बड़ी बात है। उस दिन रात ये ऐसी इबादत है कि कोई घड़ी नहीं, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसमें उठने बैठ, यानी हर वक्त हमारा किसी ना किसी मखलूक से ताल्लुक है, और इससे जन्नतें मिलती हैं, ऊंचे मुकाम मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक औरत को सिर्फ एक हमसाये के साथ अच्छे ताल्लुक रखने पर लाने से ये जन्नत ही बशारत दी, इसको कोई इसका इबादत नहीं थी। अक्सर शिकायत होती है हमारी कि जनाब हमारी दोस्ती होती नहीं हमसायों के साथ, मजा तो यही है कि दूसरा आदमी आपके आपके खिलाफ हो और आप उसके अच्छे हो, असल तो ईमान यही है, मोमिन तो यही है, इसी का नाम तो है। नबी करीम तशरीफ रखते थे, आपने पूछा ऐसा मजलिस लगी हुई थी आप तशरीफ ले आए, तो कहने लगे कि मैं तुम्हें बताऊं कि सबसे अच्छा इंसान कौन है, सबसे बेहतरीन इंसान कौन है। सब चुप सहाबा, फिर आपने फरमाया है तुम्हें बताऊं उसके सबसे बेहतरीन इंसान कौन है, फिर चुप, फिर आपने फरमाया मैं तुम्हें बताऊं सबसे खूबसूरत बेहतरीन इंसान कौन है, या सुनो जरूर फरमाइएगा कौन अच्छा है और कौन बुरा है। उधर भी रहते ना साहब पूछते कि भाई अगर बुरे हम हो गए तो खत्म मामला, कौन है तो आपने क्या कहा, आपने फरमाया कि जिसके खैर, जिससे इंसान, जिससे लोग खैर की उम्मीद करें और शर से खौफ रखें, यानी जिसके खैर की लोग उम्मीद करें भाई ये तो बहुत अच्छा नेक आदमी है, और शर से बेखौफ, हमें इस शर में हमें नसीब ही नहीं होगा। जैसे अभी मैंने बताया कि मोमिन की शान तो ये है कि भाई आदमी कहे कि सारी दुनिया मुझे धोखा दे सकती है, ये नहीं दे सकता, तो फिर ऐसा इंसान कि जिसकी खैर पे सब उम्मीद रखे कि बहुत नाइस आदमी है, बड़े हमारे बेहतरीन करेगा, और उनको ये खौफ ही ना हो कि हमें नुकसान पहुंचा सकता है, सबसे बेहतरीन इंसान ने फरमाया। और ऐसा इंसान कि जिससे खैर की उम्मीद ही ना रखी जाए कि यार इसने कोई भला काम करना ही नहीं, और शर का खौफ हो उससे कि इसने कोई ना कोई हमें नुकसान पहुंचा देना है, फरमाए ये बदतरीन इंसान है। इसका एक बदतरीन इंसान है दुनिया का, इसका कोई ताल्लुक नहीं इस्लाम से। तो ये सी चीजें हैं, देखें अब हम अपने आप को देखें क्या मामला है। अब ये माशरा डिस्टर्ब हो जाता है जब हुस्ने माशरत नहीं होगी इस्लाम के अंदर, उसकी रूह तो निकल गई ना माशरे की, रूह निकल गई है, बाकी देखन दिखाव बहुत है लेकिन असल रूह तो निकल गई है, असल सूरत खत्म हो गई माशरे की, तो फिर क्या होगा? जहर तो नजर आ रहा होगा सब, बहुत जहर होगा, जहर में तो बड़ी तूफान मचा होगा, जहर में सब कहेंगे बस ये इसकी क्या बात है, उसकी क्या बात है, इसमें ये बहुत जहर तो चमक रहा है, लेकिन रूह निकल चुकी है तो फिर उसका रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन फिर क्या होता है? जुल्म, बत्यांती, बेतबारी, लड़ाई, झगड़े, फसाद, यानी हर वो चीज जिसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं वो सारी इस्लाम के अंदर नजर आ रही होगी। अच्छाइयां चुप चुकी होंगी सारी, सो इस जिस तरह मैंने बताया है आज नबी ने जो तारीफ फरमाई एक इंसान की कि भाई आंख बंद करके आदमी कह दे कि सारी दुनिया मुझे धोखा दे सकती है, इंसान मुझे कभी नहीं धोखा देगा, मुझे बताया आज हम किसका हाथ पकड़े? बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी हार्ड। और ये हर मोमिन की शान है, ये नहीं होगी तो इस्लाम नहीं है। आप सोचे कहीं ना कहीं आज मार कर रहे हैं तो क्या होगा? डिप्रेशन, बीमारियां, परेशानियां, मुसीबतें, जुल्म, फराद, एक तूफान मचा होगा। और मुझे बताएं कि क्या तूफान मचा हुआ है? इस्लाम जिसका मतलब पीस, अमन। एक मोमिन अमन का पुतला होता है, सुकून ही सुकून उसके अंदर होता है, सकीना होता है उसके अंदर। ये तो ये क्यों है सारी चीजें? वजह उसकी है कि हमारे यहां उसने अखलाक खत्म हो गया, अंदर से बिल्कुल फ्रॉडिंग है, बिल्कुल फ्रॉडिंग है। वरना ये कि 10-10 लाख आदमी उमरा और हज कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा तवाफ भरा हुआ है, क्या शान है इस्लाम की, ये फिर क्या है? इसलिए कि वहां ही होता है धक्का लग जाए तो लड़ाई होती है, ऐसी जबरदस्त लड़ाई होती है, उस मुकाम में लड़ पड़ते हैं। खुदगर्जी देखने की चीज होती है, खुदगर्जी कितनी बड़ी, यानी एक चीज है कि इंसान में खुदगर्जियां आती हैं, अपना मफाद पसंद करता है दूसरे का नहीं, आज है या नहीं है, ये मैं ले लूं या मुझे ये मिल जाए, उसको काट दो, उसको पता ना चले जा उस चीज का, नहीं ऐसे कर लेते हैं इसमें मुझे फायदा है। या मुलाकात भी रखनी तो किसी लालच से रखनी, ताल्लुक रखना तो देख के किसी पास कितना पैसा है, ये कैसा है, उससे खास ताल्लुक है, वो मेरा ये है, हर मफाद दुनिया के खातिर, खुदा के वास्ते सोचो कि मरना है, मौत आने वाली है, मौत आने वाली है, सच्चे मुसलमान बन जाओ, वो जिस तरह का अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, ऐसे मोमिन बनो अल्लाह के, हर इंसान जो है उस पर एतबार करेगी, बहुत ही जैसा आदमी कोई नहीं हमने देखा, इतना बात बार है, बात करता है तो पहाड़ों के ला देता है, अपनी बात पे कायम रहता है, इसके वादे, इसका करैक्टर, इससे पूछें आप साफ गो, इतना अच्छा इंसान, मुझे बताएं। आज गैर मजहब के लोग कहते हैं कि यार तुम्हारा इस्लाम क्या और तुम क्या हो, मैं हकीकत बता रहा हूं, खुले कहते हैं, क्या कंट्रास्ट, हम जिस इस्लाम को जानते हैं वो आप नहीं है, बड़े से बड़े आदमियों को कह देते हैं, बड़े से बड़े आदमियों को, मैंने खुद अपने कानों से सुना, ऐसे मुकाम पे सुना, क्या बताऊं, अपने कान से सुना मैंने, उनके मुंह से सुन इस्लाम की बातें वो कर रहे थे, लीव इट ना दम दस फिनिश, बताओ उनको पता है कि इनकी किताब सच है, इनके असल किताब पे ये लोग नहीं चल रहे अपने, हमें तो कहते हैं कि हमने तो लिख अपनी खुद लिख के किताब बना ली, तो यही कौन सी इस किताब पे चल रहे हैं बताएं, ये कुरान नहीं है उसने माशरत, क्या कुरान में सूरह अज़ाब की आयतें नहीं आई, क्या वाक्य आपको नहीं पढ़ा, इतने बड़े वाक्य को कुरान की आयत बनाने का मकसद क्या था अल्लाह ताला का, कि अल्लाह ताला नबी से उसमें एक दावत देते हैं, दावत दी सहाबा पता, इसको इतना बड़ा किस्सा कुरान में बनाने की जरूरत क्या थी, दावत दी नबी पाक सहाबा तशरीफ लाए, क्या हुआ उसमें, ऐसा हुआ जब दावत दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सहाबा को पता चला, सहाबा शौक और शौक के साथ हुजरे मुबारक तो चल पड़े, जाहिर है उनको तो ईद बन गई कि चले भाई दीदारी होगा और क्या बैठेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर, क्या बात है, वो तो आशिक थे, सच्चे आशिक, उनकी कहानी सुना अल्लाह पाक सुना रहे, अंदाजा लग रहा है, सच्चे आशिक थे, कोई उनकी नीयत में खराबी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, इश्क के मारे गए, वो ये नहीं खाने पीने के चक्कर में गए थे, कोई ऐसे मामला नहीं था, चले गए और क्या किया, जोश इश्तियाक के अंदर कि हम वहां जा रहे हैं, ये होता है आपका, वो वक्त से पहले पहुंच गए, अभी खाना तैयार भी नहीं था, और वक्त से पहले पहुंच के बैठ गए कि खाना आएगा। उधर क्या हुआ कि कुछ साहबी जो थे, जगह थोड़ी थी, पीछे इंतजाम में खड़े हुए कि ये निकले तो हम खाएं, वाकई ये था। आप पढ़ते होंगे सूरज, अब अल्लाह ताला बता रहे हैं सुभान अल्लाह, एक एक चीज सरकार एकदम से पहुंची है हमें, इस वाक्य बताने का मकसद था। अब अल्लाह ताला बोलते हैं उन साहबियों को जो आशिक रसूल थे इतने, और खुद अल्लाह के सिलेक्शन में थे, चुनके साहबी बनाए थे अल्लाह पाक ने, उनको वास्ता दे के हमें समझाया जा रहा है कि देखो जब दावत हो ना किसी की, नंबर एक उनको बताया जा रहा है कि ये तो नहीं बोलेगा लेकिन मैं बताता हूँ, अल्लाह ताला कहते हैं ये तो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा लेकिन मैं तुम्हें समझाता हूँ। सबसे पहली बात तो एटिकेट्स हैं दावत के, कुछ हम ये करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया शोर दावतें होती हैं, मेहरबानी चीज़ें क्यों होती हैं, घी के वो जो होते हैं ना, दही के डोंगे डोंगे पी जाते हैं, मैं बगैर पूछ खाए बस पी जा रहे हैं, जिससे मैंने आपको बताया शोर, कोई पता नहीं आदाब, हमें यही नहीं पता कि हमारे इस्लाम में क्या आदाब है खाने के, मेहमान के क्या आदाब है, हालांकि ये इल्म है, ये इल्म है जिससे जन्नत मिलेगी और दोज़ख। खाना खाने जा रहे हैं, मोमिन की शान यह है कि जब भी कोई किसी अमल की तरफ जाए उसको उसकी शरी हैसियत का पता होना चाहिए, और ये फर्ज फर्ज है, हर बंदे पे फर्ज है, ये चीज ये फर्ज है। उलमा कराम जो सीखते हैं वो तो ऊंचे दर्जे के आलम इलम सीखते हैं, लेकिन ये हर मुसलमान पे फर्ज है कि जिस स्टेटस पे वो जा रहा है उसका इलम उसके पास होना चाहिए कि आज मैं मेहमान बनकर जा रहा हूं तो मेहमान की क्या चीजें, अभी सूरह अज़ाब में आ रहा है, अब तुम पहले क्यों आ गए, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाने से पहले जिस वक्त बुलाया मेजबान तो उस वक्त आओ तुम खाने के, पहले तुम्हें नहीं आना चाहिए था क्योंकि इससे तकलीफ हो रही है, हो सकता है वो क्या उसके हालातों बात करने के चक्कर में हो ना मिले, लेकिन तुम कैसे पहुंच गए, इस सहाबा कराम को कहा जा रहा है कि तुम क्यों पहुंचे पहले। और फिर दूसरे का उन्होंने काम क्या किया कि खाना खाने के बाद वो बैठ गए, जहर किसका दिल करता है नबी मोहम्मद सब छोड़ने, वो तो इतने ऊंचे के दर्जे के आदमी थे ना, ताल्लुक उनका दोस्त डिफरेंट था, तो अल्लाह ने ये समझाया कि पीछे लोग इंतजार कर रहे हैं, खाना खाने के बाद अदब यह है कि जिस तरह मेजबान आपको खाना खिलाए खाना खाएं और बैठ के गप्पे ना मारने बैठ जाए चौड़े होके, चाय आएगी अब ये होगा तो फला होगा, वैसे बैठे आम हमारा सुना नहीं, क्या है मेजबान ने आपको खाना दे दिया खाना खाएं उसके बाद तशरीफ ले जाए, अगर कोई पीछे वाले लोग हैं तो जल्दी से आके वो भी खाना खा लें, वहां बैठने की जरूरत नहीं है, तकलीफ होती है मेजबान को, बताए कितनी बड़ी बात है। आज हमारी दावतें होती हैं सब कुछ होता है, कहीं इस्लाम का चक्कर नजर आता है, अगर कोई गैर मजहब ये हमारा इस्लाम पढ़ रहा है और वो हमारी किसी दावत में आ गया होते इधर उधर झांकेगा, इतना कंट्रास्ट इनके सोसाइटी के अंदर, ये क्या छुड़ उछलते फिरते हैं फुलते फिरते हैं, एक एक कदम पे इख्तलाफ नजर आएगा आप, एक एक कदम पे इख्तलाफ, और ये दीन है सब, ये दीन ना होता तो ये कुरान कैसे बन जाता, इतनी बड़ी आयत सारी इस बात पर ये सिखाने के लिए, अब मेजबानी का हक हाँ कितनी बड़ी चीज है, आप ये देखिए किस तरह सिखाया अल्लाह पाक ने इस चीज को कि देखो ये अकल करनी चाहिए, और क्या एक देखिए इसमें कितनी एक और लॉजिक देखें, हम दावत करते हैं किसी की खाना दे रहे हैं, मैं आपको दे रहा हूं मुझे दे रहे हैं, हम अपनी मर्जी से पका रहे हैं यही है ना, अब दूसरा आदमी क्या पता हमें, मैं आपको दावत देना चाहता हूँ किसी को, ठीक है ना, मैं तो अपनी मर्जी से पकाऊंगा, मिर्चें डाल दूंगा जी साग में मिर्चें हो तो बड़ा मजा आएगा, इसमें जहाँ थोड़ा सा ये मिला दो तो बड़ा मजा आएगा, भुना हो तो बहुत ये मिर्चें खूब डालो इसमें, अब जो साहब आ रहे हैं वो बेचारे मिर्चें पसंद नहीं करते, अब वो बैठ गए खाने के लिए, वो तो फारिग है ना पूरे हफ्ते के लिए मेरी तरह बेचारा, वो तो गया ना दावत खाने, क्यों मेजबान और मेहमान दोनों का हकूक बताया जा रहा है, क्या तो मेजबान को ये चाहिए कि जिस वक्त खाना दे रहा है किसी को, मतलब खास खाने के लिए तो शादी का तौर है ना उसमें एहतियात करे, तो वो पूछे अपने मेजबान से कि हजरत आप किस किस्म का खाना पसंद करते हैं, तो उसको तकल्लुफ नहीं करना चाहिए उसको, नहीं जी जो नहीं नहीं बिल्कुल ये भी गलत है, वो बताएगा जी मुझे ज्यादा मिर्चें पसंद नहीं या नमक पसंद नहीं या ज्यादा मीठा वो नहीं हो फला नहीं हो, तो फिर क्या करेगा वो उसके मुताबिक खाना बनाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर खाना खाएगा तो दोनों को सवाब मिलेगा, मकसद ये है कि अल्लाह राजी हो जाए ना, उसके नंबर बन रहे ना उसके नंबर, ये इस्लाम है, कितनी राहत मिलेगी देखें आप, खाना खाने के बाद दोनों को कितना सुकून मिलेगा, उसके बाद नमाज में कितना मजा आएगा। अब ये देखिए कैसा माशरा है इस्लाम का, देखिए। अब हम ये कह रहे हैं कि जब अपनी मर्जी को बना रहे हैं, उसको खिला रहे हैं मिर्ची बेचारे को, तो उसके तो बेड़ा गर्क हो रहा है, ठंडी सड़क उसकी तो, और कह रहे हैं बदावत। अब उसका क्या है, ये तो मेजबान मेहमान का क्या है, खबरदार जब उसने पका लिया खाना, ये आपको खाना दे दिया, तो खबरदार आपने बोलना नहीं है, मीन में खराब को निकालने की कोई इजाजत नहीं है। उसने पता नहीं किस मोहब्बत से बनाया है, किस खलूस से बनाया है, कितनी उसने पता नहीं कर्जा लेके बनाया है, आपने खाने और तारीफ करनी है। सुभान अल्लाह, इसकी किस्सा दिखाए नबी करीम जिंदगी में कभी किसी खाने के आपने ये नहीं कहा कि इसमें मिर्चें कम है, इसमें फला, आपने कभी नहीं कहा, यह आपने हमें करके बताया, जो मिला खैर तारीफ की, तारीफ की उसकी बरकत की दुआ, उसके घर की बरकत की। यह भी एक अदब सिखा है कि जब कोई तुम्हें खाना खिलाए तो तुम्हें लाजिम है कि तुम उसके घर के लिए दुआ करो, उसकी सेहत के लिए दुआ करो, उसकी जो चीज की दुआ भी है, हम पढ़ते हैं दुआ, तो सारी दुआएं सब कबूल हो जाती हैं, तो खिलाने वाले को कितना स्वाद मिलता है मुझे बताए। इस्लाम जिस तो है ही नहीं हमारे में, ठीक है रात के तहजीद पढ़ के तो हम बड़े चौड़ों के फिरते हैं जी, हम बन गए बाजदीद बस्तानी, तो बाकी ये इसका कौन हिसाब देगा। अल्लाह का शक्लों को नहीं देखता, हुस्न अखलाक को देखते हैं सब, हुस्न अखलाक को देखते हैं, नहीं समझे बात। तो भाई बड़ी कमी है आजकल, तो क्यों कमी है, माशरा हम देख लें, जो मैं बातें आपसे करूं तो एक ड्रामा ड्रामा ही अंदाज लगता है, इस दुनिया तो छोटी चीज है ही नहीं जी, कौन से इस्लाम बता रहे हैं, इतने इस्लाम है आज, इतने इस्लाम है कि जिसका आप तस्वीर ही नहीं कर सकते। आपको कोई आप बात बता रहे कहिए धके से पागल आदमी किस जमाने की बात करता है, ये किस जमाने की बात हो, अंदाजा लगे कैसी बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम माशरा दे रहा है हमें, कैसी सोसाइटी दे रहा है कि सवाल नहीं है खुल की बात की कि कोई भी इंसान, अगर वो इंसान है शिकल इंसानों वाली है, जानवर भी है, आपसे तकलीफ उसको ना हो। आपने ये नहीं देखा ये कौन है, कैसा है, काला है, पीला है, नीला है, उदय, कुछ नहीं देखा, क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता, क्या कोई ताल्लुक नहीं, पहले इंसान को देखना है और वहां से नंबर बनाना है अल्लाह को राजी करने के, चलते चलते आपका हाथ भी लग जाए वहीं रुक जाए। अब बोले यार माफी चाहता हूं, बहुत कम लोग करते हैं, वहीं रुक जाए, मेरा हाथ लग नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो महसूस नहीं, बस माफी चाहता हूं। और एक बात देखिए, दिन में हमारे से गलती हो जाती है, इतना सेंस पैदा हो जाए इंसान में, हम हैं तो इंसान ही है ना, फरिश्ते तो नहीं है ना, तो उसमें फिर क्या करना चाहिए, आदमी फिर उसमें नदामत करे कि यार मैंने इस आदमी को बुरा कह दिया, अच्छी बात नहीं है, सेंस ऑफ नदामत होना चाहिए उसमें, डिवेल्प हो जाए अंदर से ऐसा कि फिर क्या करे उसके लिए, यार ये बहुत बुरा किया, या तो उससे माफी मांगे, या इतनी जरूरत नहीं है कि उसके पास जाके माफी मांगे, तो दुआ करे उसके लिए, तीन कुल पढ़ के कह दे अल्लाह इसका सवाब उसको पहुंचा देना, और जब नमाज पढ़े तो सीधा कि अल्लाह ताला इस नमाज का सवाब मैं उसको देता हूं, क्यों कि जो मैंने ज्यादती के साथ किया, ज्यादती का मियार बता दूं आपको क्या है, तकलीफ का मियार ये नहीं कि थप्पड़ मारना, छुरी मारना, पटाखे मारना, हम इसको ज्यादती समझते हैं, किसी की लात मार देना, किसी का मकान तोड़, ये ज्यादती नहीं, तो ज्यादती दर ज्यादती है, हमारे इस्लाम का मियार क्या है, सुभान अल्लाह जी बात सुन लो, ज्यादती का मियार सुन ले आप, बेसिक उसका वो कहां से शुरू होता है, जिसको ज्यादती कहा जाता है और जिस पे जहन्नुम की सजा मिलती है, जिसको मैंने आपको बताया क्या, कि किसी इंसान को सिर्फ सिर्फ सुन ले अपनी मुंह की बो के साथ भी तकलीफ देना, मेरे साथ एक आदमी बैठा है, नहाए नहीं है, कपड़े से मैला रहे हैं और वो मुझे तकलीफ दे रहे हैं, सख्त गुनाहगार हो रहे हैं, गंदा रहना इस्लाम में गुर्बत नहीं है, ये बड़े बड़े गरीब देखे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, अगर मेरे पास एक भी कपड़े, ये हम समझते हैं हम बड़े गरीब, अपने आप को गरीब सोने के लिए हम बड़े मस्कीन हैं, हम फलाजी हैं, गंदे रहने शुरू कर देते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह ये कौन सा मियार है, इतना नहीं है भाई, आप अगर गरीब हैं आपके पास कपड़े नहीं है, एक तो है ना उसको ही धोके पहने साफ, पानी तो हर जगह, मुंह हाथ अच्छी तरह धो ले, साबुन ना हो तो अच्छी तरह मुंह हाथ धोकर पांच वक्त नमाज पढ़ें और कपड़ों को बाकायदा आप धोएं और साफ रखें, बेशक खतरे के हैं कि ऐसे भी कपड़े आप, लेकिन हम मैले करके और बुरा हाल और ये वस्ती ने फड़ी है, ये क्यों जी गरीब, बड़ा शौक मांगे गरीब है, तो थप्पड़ लगना चाहिए कि कैसा गरीब है, तुम गरीब तो है लेकिन गंदा क्यों है, गंदा और गंदा होने क्या मतलब है, एक जोड़ा इंसान के पास हो वो भी साफ रह सकता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, आप धोए वो नहीं हो सकते। ये बिल्कुल बकवास है कहना कि गुरबत की वजह से मैं गंदा रह रहा हूं। गंद और ईमान ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ऐसे आदमी को सुना कि तू गंदा क्यों है, क्या तकलीफ क्या है? नहीं जी बहुत गरीब का मतलब क्या, तू सब पानी में डुबोगे इनको पहले कम से कम पसीना खत्म हो जाएगा तो कपड़ा साफ हो जाता है। दो दोहाता तू कर, नलके भी चल रहे हैं, कुएं भी हैं, तालाब भी हैं, कहीं जाके आप धोए कपड़ा साफ। लेकिन क्या वो पता नहीं कि हम बहुत गरीब हैं। तो क्या बता रहा था मैं, हाँ वो से भी तकलीफ देना, देखें कहां बात खत्म होती है। ये मोमिन की शान नहीं, जहन्नुम में जाएगा तो उसे वो तकलीफ देगा। एहतियात सुबह के वक्त हम आते हैं ना फजर पर, अक्सर लोग अपने एहतियात नहीं करते मुंह का। माजर से कहता हूं मुझे तो बड़ा मुश्किल होता खड़ा होना। ये हदीस सही है, कुरान सही है, यकीन करें नमाज नहीं पढ़ी जाती। वो खत्म ही हो जाता है तो दिमाग की रूह है ना बदल करता है, जल्दी जल्दी नमाज खत्म हूं मैं इसके पास से हटूं। कितनी बड़ी पता है उस आदमी के लिए मुश्किल है जो ये काम कर रहे हैं। सॉक्स में देखा वो आती लोग अपने आप बड़े वो समझ रहे हैं कि हम तो बड़े मस्त आदमी हैं। मैं क्या बताऊं आपको, ये क्या मस्त है, गंदे सॉक्स पहन के आ रहे हो, दूसरों को तो दिमाग खराब कर रहे हो। क्या उसका सजा होगी नहीं पता है। बो से कहते हैं ये किसी इंसान को तकलीफ देने वाला, जैसे नमाज में आप हैं मुंह से बो आपके हमारे यार ये आपका कानून बन रहे हैं, कानून अल्लाह के नबी बना रहे हैं। इस बो का ही हलाल चीज है लहसुन, हलाल चीजें नहीं प्याज, बेहतरीन चीजें, बड़ा मजा आता है खा के। ये नहीं आता सबको आता है लहसुन और प्याज, बहुत सी चीजें सालों में डालते हैं, बस भी खाते हैं, उसका अचार भी बनता है सब कुछ, लेकिन पता है हलाल है सब कुछ है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हराम है ये, तुम नहीं खा सकते, जब नमाज पे जाओगे इसको मत खा कर जाओ। क्यों? कि दूसरे भाई को तकलीफ होगी तुम्हारे मुंह से। सुभान अल्लाह, बनाना कानून बोलो सुभान अल्लाह। ये है इस्लाम, इसका नाम है इंसान इससे बनता है। नमाजें इबादत अलम अपनी जगह मौजूद हैं लेकिन उसको हम जाया कर देते हैं अपने अखलाक, अखलाक है नहीं। फिर ऊंचे ऊंचे सांस भी लेंगे, एक और जो हुजूरत है खांसना नहीं है, खांसना कब है जब सिजदे में जाएंगे मुंह खोल खोल के खांसेंगे, दूसरा आदमी बचाएगा उसका क्या हाल होगा जो सिजदे के अंदर होगा। आम दिखा देता हूं आपको, मेरे साथ ऐसा होता है तो यकीन करें नमाजी गई नमाज तो बेचारी क्या अब मुंह खोला है उसने और खोल के सिजदे के अंदर, आप भी सिजदे के अंदर आया अब तस्वीर पढ़ रहे हैं खा खा मुंह खोल के, तब उस आदमी क्या हाल होगा साथ होगा बेचारा। जो सेंस है अब कहते हैं हम बड़े एजुकेटेड आदमी हैं, हम तो बड़े वेस्टर्न हैं, फला तुम किस कम के वेस्टर्न है, इससे तो एक देहाती अच्छा होगा, एक देहाती अच्छा होगा जो सूरत में रहता होगा या कहीं और जगह रहता होगा, कम से कम उसको एटिकेट्स तो आ गए होंगे इस्लाम के, उसके साथ नमाज पढ़ेंगे ना वो आएगी आपको, कपड़े भी धो के लाएगा अपने, मशीन नहीं तो बेचारे हाथ से धो के लाएगा, साफ खड़ा होगा, मसवाक तीन चार दफा करेगा, मुंह से बो नहीं आएगी, तो वो सौ दर्जे बेहतर हो गया इंसान से। हम बड़े भूत में हैं, बड़े वेस्टर्न, ये खुशियाँ मिलती हैं, ये परफ्यूम मिलते हैं, ये वो होता है, ये शैम्पू वफूमा भरे होंगे, लेकिन जब नमाज पे आकर तो ये हाल इंसान का, मुंह से बदबू आ रही है, जिस्म से बो आ रही है, समझे ना पूरा हाल है, उस नमाज पढ़ रहे लेने जोर जोर से, दूसरे आदमी को तो ऐसी की तैसी हो जाती है, बो का सारा मुंबा खोल देते हैं, ये क्या बात है, फरिश्ते चले जाते। तो क्या हुआ अब देखिए, इस बो को खत्म करने के लिए अल्लाह के नबी ने क्या चीज बनाई है और कितनी खतरनाक होगी ये बो और लोगों की नमाजों को खराब, कितनी सजा इसकी होगी कि उसके मुकाबले में जो चीज आ रही है उसकी अहमियत देखें आप क्या है। इस बो को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, मसवाक, कि मेरी उम्मत की नमाजियों को नमाज खराब ना। तो अल्लाह के नबी सरसों ने क्या किया, मसवाक किया। और क्या क्या मसवाक क्यों किया करो, कहते हैं अगर मुझे शौक ना होता, मुझे ये डर ना होता कि इन पे बोझ बन जाएगा, तो हर नमाज पे इसको करना फर्ज कर देता। अब इसकी अहमियत समझिए, क्यों, वजह क्या है कि उम्मत मेरी करेगी कम से कम लोगों की नमाजें जो होंगी वो सही होंगी, इनके बोझ मुंह से निकलेगी, इसमें खासियत ये रखी है। पीलू के आप पीलू के करें ना, क्या खूबसूरत मजा आता है सुबह सुबह नमाज वो करने का, किसी टूथपेस्ट में नहीं आता जो अल्हम्दुलिल्लाह उस मसवाक में करने का, फ्रेश इंसान को। तो ये अहमियत दे दी मसवाक की। अब आप बताएं सिर्फ एक भोग की वजह से कि दूसरे भाई को तकलीफ होती है, अल्लाह के नबी ने एक चीज ऐसी दी है और उसका मकाम इतना बुलंद कर दिया है कि जो मसवाक करेगा ये गारंटी है कि वो कलमा पढ़ता हुआ जाएगा, आखिर इतना कलमा नसीब होगा उसको। कितनी तकलीफ का ख्याल है आप नमाजियों की और इतनी अहमियत दी उसको, आप अंदाजा लगा लें कि जब आप वसाल आपका हो रहा है, उम्मे आयशा रदी अल्लाह तआला हजरे में मौजूद हैं, तो सबसे आखिरी अमल जो था आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अमल था, कहते हैं आयशा मसवाक ले आओ। अब मसवाक आ जाती है कमजोरी की वजह से या हकमत की वजह से या अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। आपने मसवाक थोड़ा लिया और उसके बाद कहा कि आयशा तुम इसको चबाओ और नरम करो मेरे लिए। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ने उस मसवाक को अपने मुंह के साथ नरम किया, आपने उस मसवाक को मुंह में डाला और उसके बाद आपने रहलत फरमाई। ये आखिरी मन था। यहां एक चीज देखे नुकता, कहां जा रहे थे अल्लाह के नहीं तो अपने रब से मिलने जा रहे थे, अपने हकीकी रफीक की तरफ सफर कर रहे थे, रब से मिलना था तो किस हालत में गए, मसवाक के साथ। हमें जब कहा कि जब तुम अपने रब से तुम जाओगे तुम भी क्या करोगे, मसवाक करो, किस हालत में, सजदे की हालत। ये है मसवाक, कितनी बड़ी चीज, अल्लाह के पास जाने के लिए भी क्या है, मुंह के अंदर कोई बोल इंसान के अंदर नहीं होनी चाहिए, सफाई तकलीफ ना हो किसी को। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती थी मुझे दो चीजों पर बड़ा फख्र है हमारी अम्मा, एक तो ये कि नबी पाक का जब वसाल हुआ मेरे हुजरे में हुआ, नंबर दो कि मेरे और आप सब संत का लाभ आखिर में एक दिन लाभ मिल गया कि मैंने जवाब दिया, किसी की आजादी नहीं है कितना बड़ा। तो मेरे भाई ये सब चीजें हैं देखें आप, तो इनके लिए भाई हदीस सुन लें, आखिर में हदीस सुनाता हूं उसका मजमू निकल आएगा बात का। एक साबित तशरीफ लाए नबी पाक के पास और साहब भी बैठे हुए थे तो दूर बैठे जैसे कायदा था, आप सल्लम उनको क्या वापसा नाम था शायद उनका रदी अल्लाह तआला, वापसा आगे आ जाओ ताल होना, तो उठ के वो नजदीक आ गए, आपने कहा और नजदीक आओ, थोड़ा सा आगे बढ़े और नजदीक आगे नहीं, हमने कहा और आ गया, सब सहाबा देख रहे हैं और आ गया, हद तक कहते हैं कि मैं अपने मुकद्दर पे नाज करता हूँ, ये उनके लफ्ज हैं, मेरे और नबी पास के घुटने शरीफा जो थे वापस मिल गए। कहते हैं अब मैं एक साथ इस तरह बैठा हूँ तो उनके बस आस पास तुम सवाल कुछ करने आए थे, कहते यार सुनो कुछ सवाल करने आया था, तो आपने कहा तू सवाल करेगा मैं तेरे सवाल सवाल का जवाब खुद ही दे दूं। तो उसने कहा यार तो बहुत ही अच्छा है अगर आप खुद फरमा दें मेरे सवाल का जवाब। अच्छा आपने ठीक है मैं तेरे सवाल का जवाब देता हूँ, तो खैर और शर का पूछने आया, कहते यार बिल्कुल मैं यही पूछने आया था, खैर क्या चीज़ है और शर क्या चीज़ है, हमें कैसे पता चले खैर खैर और शर का, अच्छी बुरी चीज का। तो आप सब फिर फरमाया कि जब आप मुझसे लेना चाहता है खुद लेना चाहता है, नहीं यार मैं तो एक सवाली हूं, अगर मैं जवाब देने चाहता तो आपके पास क्यों हाजिर होता, यार मुझे तो आपसे जवाब चाहिए इसका, आप जवाब फरमा दें। तो कहने फिर सुन जवाब नजदीक, आपने उसके सीने पे ऐसे हाथ मारा, मार कहने का वासफा खैर और शर जानने के लिए किसी मुफ्ती की जरूरत नहीं, अल्लाह ने तेरे दिल में एक मुफ्ती बिठा दिया है, अब वो तेरा कल्ब है, इसको साफ और सुथरा रख, इसको बना के रख, खैर का भी पता चल जाएगा और शर का भी पता चल जाएगा। ये है सूफिया जो मेहनत कराते हैं, हर चीज इस्लाम को सिखाने के लिए दिल से ताल्लुक होता है इंसान के लिहाज से, ये जो अब जिक्र करते हैं ये इसकार करते हैं ये अल्लाह वालों के पास जाते हैं, मकसद उसका यह है कि जैसे जैसे इंसान का दिल बनता चला जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे जैसे कसरत जिक्र आप करेंगे क्या बनेगा, दिल खूबसूरत होना शुरू हो जाएगा, जब दिल खूबसूरत होना शुरू हो जाएगा तो सारी चीजें उसमें आना शुरू हो जाएंगी अल्लाह के फजल से, और उस तरतीब के साथ आएंगे जैसे जैसे इस्लाम है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे जैसे इस्लाम के अंदर अहमियत है जिन चीजों की, वो सारी चीजें बारी बारी निकलना शुरू दिल में आना शुरू हो जाएंगी, उसके अंदर चमकना शुरू हो जाएगी। तो क्योंकि ये जबानी तो है नहीं, ये तकीरों का मजहब तो है नहीं, तो एक अमल मजहब है। आपने बातें सारी सुन ली, मैंने सुना दी, आपने सुन ली, लेकिन सुनने के बाद हुस्ने माशरत आ जाएगा क्या? हुस्ने अखलाक आ जाएगा? नहीं, तब तक नहीं आएगा जब तक दिल नहीं बनेगा। जब तक दिल नहीं बनेगा तो अंदर कैसे आएंगी सारी चीजें हमारे में कि हम लोगों को तकलीफ ना दें, हम लोगों को बुरा ना कहें, हमें सेंस पैदा हो जाए उस मुकाम पर चले जाए कि लोग हमें ऐसा समझ लेंगे कि इन पर एतबार करो। तो जब होगा, जब आपका दिल बन जाएगा, दिल बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी चीजें तरफ आना शुरू हो जाएंगी, असल इस्लाम आना शुरू हो जाएगा। ये वजह है कि हम कसरत जिक्र करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप अल्हम्दुलिल्लाह काफिर से जिक्र कर रहे हैं, जिक्र की मजलिस में बैठते हैं, करते हैं, पहली पोजिशन से अब तक आपका डेफिनेटली फर्क पड़ गया होगा। डेफिनेट वो पता नहीं चलता ना आदमी को, लेकिन दूसरा आदमी आपको बताएगा इस शख्स को तो काफी तब्दीली आ गई है, बड़ा रहमदिल हो गया है, बड़ा बातें सुनता है, बड़ा जी है। हालांकि इस चीज का शऊर नहीं है कि भाई है क्या चीज। आज आपने हदीस सुनी है तो आप जांच भी जाएंगे यार इसको और डेवलप करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि जिक्र करने वाला खाली कभी नहीं होता, खाली कभी नहीं हो, उसमें एहसास पैदा हो जाता है। ये मैं गारंटी से कहता हूँ, आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जिक्र करते हैं, पहले इंसान में अब के इंसान में जरूर फर्क पड़ गया हो, पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये जिक्र है। तो और मेहनत करें, अभी मेहनत करें ऐसी, अल्हम्दुलिल्लाह एक एक चीज मजलिस अल्लाह के जिक्र में आता है, जो अल्लाह का जिक्र करता है और इस नीयत से करता है कि हम सिर्फ इसलिए जा रहे हैं, सवाब तो अपनी जगह है, लेकिन जिक्र में जाने का मकसद यह है कि हम ऐसे इंसान बन के आखिरत में उठें कि अल्लाह ताला कहे कि वाकई तेरा इस्लाम खूब इस्लाम था, बस और कोई मकसद हमारा ना। और उसके लिए जरूरी है कि हमें किसी मजलिस में जाना चाहिए, किसी अल्लाह वाले के साथ बैठना चाहिए। वाहिद इसी नीयत के साथ हम ये मजालिस को अटेंड करते हैं, जाते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, और कोई हम मकसद नहीं है, ना होना चाहिए। मकसद ये है कि जितनी इस्लाम के अंदर जो खूबियां हैं जो आज माशरे में खत्म हो चुकी हैं, ना पैद हो चुकी हैं, करोड़ों में से एक इंसान आप मुझे दिखा दें कि जिस पे एक इंसान कह दे कि मैं इस पर एतबार करता हूं, कसम खा कह दे कि मैं सारी दुनिया से ज्यादा इस पर एतबार करता हूं, अपने घर पे अपने भाई भी नहीं करेगा, चाचा भी नहीं करेगा, मामा भी नहीं करेगा। यार वो एतबार से कह दे कि चलो जी ये मैं मकान आपके नाम लिखता हूं, तो ऐसे करना कि मैं 3 साल के बाद वापस आऊंगा तो मैं मकान आपसे ले लूंगा, मुझे बता दें कोई है जो अपने चाचा के नाम आज इंडिया में मकान दे दे, और दे दे अगर यहीं बैठे होंगे बेचारे जा जाके घुटने तंग हो गए, वो खा गया क्या है ही नहीं, आप यहीं पे नहीं होंगे कैसे, कहते है ही नहीं, चीज तो मेरा था जी, कहते बड़ा तंग आ गया हजरत, जा जाके खुदा के वास्ते, अब जज भी उनके साथ मिल गए, ये आप कैसे। तो ये क्यों है, इसलिए कि हमारे दिल में अल्लाह वालों के पास जाने का शौक खत्म हो गया, जिक्र का शौक खत्म हो गया, एक सतही किस्म का दीन उभर आया, उसको हमने पकड़ लिया और बस उसको हम एनफ समझते हैं। जो रूह है इस्लाम की, हम अपने जिस्म के रूह तक नहीं पहुंचे, वो रूह हमारा दिल है, तो रूह जो इस्लाम की वो हम हासिल ही नहीं कर सके। अब पूरा माशरा बर्बाद होकर रह गया, बाहर जो लोग हैं हमसे, बाहर जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये तो मुसलमान है, ये कैसे मुसलमान है, वो हमें देखते हैं कि हम मुसलमान तो ये हैं, हम हमें मुसलमान समझते हैं, कैसे मुसलमान, और हम मुसलमान ऐसे हैं कि हमने असल चीज को छोड़ दिया, अल्लाह के जिक्र को छोड़ दिया, अल्लाह वालों के रास्ते को छोड़ दिया, ना उनके पास जाएंगे, अगर जाते भी तो हजारों और किस्से कहानी होती, और किस्से कहानी, कोई भी खालिस नीयत के साथ, बहुत कम इंसान होगा जो ये इसलिए जाए कि मैं अंदर से सही हो जाऊं, एक सच्चा मुसलमान बन जाऊं, सदाकत आ जाए, सिद्क आ जाए मेरे में, लोग मुझ पर एतबार करें और मैं ऐसा इंसान बन जाऊं कि जो सारी तालीमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे वो मुझ में झलकने लगे। सुभान अल्लाह, बहुत कम लोग हैं, ना कोई औरत है ना मर्द, रास्ता बड़ा पता है, इस बड़े कह देंगे जी औली अल्लाह को नहीं मानते, ये फरूस को नहीं मानते, वो कहते शिर्क हो रहा है, वो कहते बिदअत हो रही है, इस पर तो बड़े झगड़े हैं, लेकिन असल जो मफहूम है इसका, सूफिज्म का, तसव्वुफ का, ये तस्किये का, जिक्र असकार का, मजालिस जिक्र का, इसकी असल भी नहीं हम जाते, मकसद असल ये है कि हमारा मकसद ये ऐसा जाने का कि हम इसलिए जिक्र असकार करते हैं, और शेख इसलिए जिक्र बताता है कि अंदर का ये जो इसको बताया नबी ने उसके सीने पे हाथ मार के बताया, वसवा देख ये तेरा दिल सही हो गया ना तो तुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, बुरी चीज कौन सी अच्छी चीज कौन सी है वो खुद ब खुद तेरे दिल में आएगी नहीं, बुराई जब साफ होगी अल्लाह आएगी नहीं तेरे नजदीक, और खैर झलकता चलाएगा तेरे दिल के अंदर, तुझे इस झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं होगी सही कौन सा है गलत कौन सा है, हर चीज अच्छी तेरे अंदर आना शुरू हो जाएगी। कभी किसी ने पूछा है कि ये सांप को पकड़ो ये डंग मारेगा या नहीं मारेगा? किसी ने पूछा? क्योंकि शऊर है ना उसका, भाई इससे डंग मारने ही मारना है। जैसे एक मोमिन बन जाता है उसको पता होता है कि बुराई बुराई है, इससे मुझे फायदा नहीं होगा, उसके करीब भी नहीं जाता। कितने लोग उसके कहते हैं हो ही नहीं सकता मैं उसके करीब जाऊं, वो दिल बन गया ना उसका। जैसे सांप के नजदीक कोई जाता है नहीं, दहाई बुराई दहाई बहुत बुरी चीज, उसको किसी वाज की जरूरत नहीं किसी चीज नहीं, कहता ये तो बहुत बुरी चीज है, मैं तो ये काम नहीं कर सकता भाई। और यार बड़ा मजा आएगा, तू आ तो सही यार, दो मिनट के तू आ देख कितना तुम, कहता भाई मेरा दिल ही नहीं मानता, मेरा दिल ही नहीं चला, मैं कैसे हूं यार, तुम क्या हो गए दकीन से हो गए, तुम पांच मिनट तुम्हारे साथ गुजारो, कहता कसम खुदा की मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं जरूर जाता। और वाकई उसका दिल नहीं कर रहा होता, कैसे करे, अल्लाह का जिक्र का नूर उतरा है तो अच्छा ही आएगी उसमें। जरा कोई इसको कह दे यार आज अलहमदिल्ला में कुरान पढ़ा जा रहा है, बहुत अच्छे कुरान पढ़ने वाले कारी हैं, एक आलिम है बहुत अच्छे माशाल्लाह, आलिम तशरीफ लाए हुए हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, बस इतनी कोई बात कर दे बाप के जाएगा, क्योंकि अच्छा उसके कबूल करते हैं ना दिल उसका। अच्छा ठीक है यार आज मुझे ये काम फाम करने थे, छोड़ो सब छोड़ो यार, चलो यार मुझे भी ले चलो देखते हैं क्या होता है। किसी ने उसको कन्विंस किया नहीं, दिल उसको कन्विंस करते हैं। जब हमारा दिल ऐसे काम करने लगे ना, फरमत जो अनुसार काम जिक्र काम कर गया हमारा, ये मियार है जिक्र का। जब ये कैफियत पैदा हो जाए ना दिल के अंदर, तो समझ जाओ जिक्र काम कर गया। बस इसको कहते हैं जाकिर, जो आखिरत में जाकिर उठेगा, जिसके दिल के अंदर ये जिक्र होगा कि खैर को खींचने वाला भाग के खींचेगा और शर को छोड़ने वाला नफरत से, नफरत होगी हेट, जैसे पखाने से पेशाब से होती ना गैर फितरी चीज है ना बुराई, तो इतनी नफरत होगी कहते यार मुझे भू आ रही, तो यार पागल हो गया तुम, कमाल करते हो, बड़ा लुत्फ आएगा, आओ तो सही यार, देखो तो सही, बैठो सही। कहते यार खुदा के वास्ते मैं कसम खा करता हूँ, मेरा तो मेरा दिमाग फटने वाला है, मुझे जाने दो यार, मैं नहीं बैठ सकता, उस तो जान छुड़ाएगा। कहता हूँ मुझे मसले वसले पता नहीं है, ये हराम है ये हलाल है, लेकिन मेरा दिल ही नहीं कर रहा यार, मैं कहता हूँ हलाल है बिल्कुल, कहता मेरा दिल ही नहीं कर रहा। जब ये कैफियत पैदा हो जाए दिल के अंदर, सुभान अल्लाह, मुबारक उस शख्स के जिक्र कबूल हो गया,
सुभान अल्लाह
जिक्र। मेहनत है दोस्तों, अभी तो जिंदगी पता नहीं कितनी है, मेहनत करें इंशाल्लाह, मैं भी करूँ आप भी करें, हाथ में तस्वीर पकड़े थे फारूक अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दिल को चमकाते रहे, बस दिल चमक जाए, दिल चमक जाए। ये देखने इतनी बड़ी हदीस बताई है, इसको चमका साहबी को कहा सब समझ आ जाएगी, तो इतनी कहा करेंगे जिक्र, मजलिस ना छोड़ो करें, बड़ी काम की चीजें दोस्तों, अल्लाह के जिक्र पकड़ लो इसको। और ये मेरी गारंटी है, मेरी क्या पीछे से गारंटी आ रही है, मैंने क्या देनी गारंटी, मैं क्या दे सकता हूँ गारंटी, तो अल्लाह रसूल दे रहे हैं, हम तो करने वाले हैं सारे, गारंटी वहीं से आ रही है कि जो अल्लाह का जिक्र करेगा फर्क पड़ेगा। जैसे मैंने आपको खुद कह दी कि मैं कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप जाकिर हैं जिक्र करते हैं, पहले में और आपके इंसान में बहुत फर्क होगा, दिल नरम हो गया होगा, बुराई समझ आ गई होगी, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता है डेफिनेटली। और मेहनत शुरू कर दें इस पर, अल्हम्दुलिल्लाह नीयत सही करके कि हमें आखिरत के लिए करना है, अपने आप को बनाना है सही, आखिरत चाहिए कुछ नहीं चाहिए, ये देखें आप अल्हम्दुलिल्लाह से चमक जाएंगे भाई, कुछ नहीं उसके बाद, और इससे बड़ा कोई भी वजीफा नहीं है। आप ये कहते हैं और कुछ नहीं, और अव्वल भी अल्लाह आखिर भी अल्लाह, जहर भी अल्लाह बातिन भी अल्लाह, जहर क्या नमाज उसमें भी अल्लाह, बातिन क्या दिल के अंदर जिक्र वो भी अल्लाह, जहर भी अल्लाह बातिन भी अल्लाह, सब अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, कुछ नहीं हाँ अल्लाह हो बस कुछ नहीं हो, और क्या चाहिए, दिल हो उस पर अल्लाह की जरब हो, हाथ में हो तस्वीर फकीरों वाली, और क्या चाहिए इसके बाद, खत्म और क्या रहेगा, खत्म बस, बाकी तो मुझे मजे ही मजे अल्लाह के फजल से, पर दिल पर कलब करके अल्हम्दुलिल्लाह, कभी तस्वीर से करें, कभी मराकबा करें, कभी चलते हुए करें, कभी शेरों में करें, इतने प्यारे प्यारे शेर नज़्मों में करें अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह को याद करें, अल्लाह को दिल में उतार ले इंसान, अल्लाह को उतार ले, दिल चमका ले, सब खत्म हो जाएंगी चीजें।